Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, इन दोनों के बीच का बैलेंस कैसे तय करें ये मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही साथ अपने अंदर में किस तरह से बैलेंस क्रिएट करें जिससे हम दूसरों की मदद भी कर पाए, लेकिन साथ ही साथ अपने खुद के अंदर का आत्मविश्वास कहीं खो ना जाए। इन्हीं सब बातों के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डीके राम भाई जी, जो कि न्यूयॉर्क से आए हैं। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो भाई जी।
ओम शांति। नहीं कभी
भाई जी, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से कर्मों से हम जिंदगी में अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म करने से किस तरह का शायद अच्छा फल ना भी मिले। आज मैं बात करना चाहती हूँ कि किस तरह से हम प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच का बैलेंस तय करें, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल सा होता जा रहा है। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं तो पर्सनल लाइफ पे असर पड़ता है उस चीज़ का, और अगर पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे तो फिर प्रोफेशनल लाइफ पर असर पड़ता है। ऐसे में क्या किया जाए?
मैंने लाइफ में ऐसा देखा कि जो हमारी डेफिनेशन है ग्रोथ की, ग्रोथ की डेफिनेशन है कि जब हम ओवरऑल ग्रो करते हैं इन ऑल फील्ड्स, जिसमें पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ, अगर वो साइड बाय साइड नहीं चलती हैं तो क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाता है। हमने कितने बड़े बड़े लोग देखे हैं, सीईओज होंगे कंपनी के, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ ना, इट इज़ इन अ रैक। तो वो अंदर से दुखी होते हैं, बाहर से बहुत पावरफुल भी होते हैं, पर ओवरऑल जो सक्सेस इन लाइफ हम कहेंगे, जहाँ पर के आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों जैसे इंटीग्रेट होती है।
Correct.
तो मैंने लाइफ में यही देखा, वास्तव में हमारी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में कोई फर्क नहीं होता है। क्योंकि जो हमारी पर्सनल लाइफ में हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वही लागू हमारे फैमिली लाइफ भी, देखो फैमिली लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, वैसे आप देखे जाए और भी कई तरह की हमारी लाइफ है, तो वो हर किसी में एक ही प्रिंसिपल काम करता है। और मेरे को वो लगता है कि आपका प्रिंसिपल है, आप ऑनेस्ट हैं, सिंसियर हैं, आपको प्यार है लोगों से, आपको रिस्पेक्ट लोगों को देना आता है, लोगों को क्रेडिट देना आ जाए आपको, तो मैंने देखा है वो फिर आप, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे फैमिली लाइफ है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाती है और दोनों ग्रो हैंड बाई हैंड ग्रो होते हैं। ऐसा मेरे को लगता है
भाई जी। कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल लाइफ के अंदर में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसका असर हम ना चाहते हुए भी हमारे काम पर पड़ने लगता है, क्योंकि शुरुआत तो हम घर से ही करते हैं दिन की। अब घर से ही निकले, अगर कुछ कलेश हो जाए घर के अंदर, कोई झगड़ा हो जाए, तो शायद पूरा दिन बिगड़ जाता है। तो ऐसे में किस तरह से अपने आप को बैलेंस करें कि अगर घर में कुछ गलत हो भी रहा है तो उसका असर हमारे ऑफिस पर ना पड़े।
इसमें भी वही चीज़ आती है, घर में गलत हो गया ऑफिस पर इफेक्ट नहीं आए, तो ये नहीं हम कह सकते कि घर की चीज़ घर रह गई, ऑफिस की चीज़ ऑफिस में, आप कर नहीं सकेंगे। घर पर कुछ गड़बड़ हुई है, उसका इफेक्ट ऑफिस में आएगा ही आएगा।
अच्छा, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है?
ऑप्शन नहीं है, लेकिन सिर्फ यही है कि हम घर में कुछ चीज़ हो जाती है तो उसको जितनी जल्दी हम उसको कह सकते हैं कि मैं उसको शिफ्ट कर लूँ, वो शिफ्ट कैसे करना है, मैंने पर्सनल लाइफ में ये देखा है कि अपने आप को फॉरगिव कर लेना, दूसरे को फॉरगिव कर देना और किसी को दोष नहीं देना। बहुत बार मैंने देखा, जैसे मेरी अपनी प्रॉब्लम होती है, हम क्या करते हैं कि दूसरों को कोई ना कोई कारण बना लेते हैं।
Correct.
तो आई नोटिस कि कोई आपकी सहानुभूति भी है, दिखाता है, पर जब वो कहते हैं ना अपना दिल खोलो, दिल खोलो, तो आप दिल खोलते खोलते उनकी भी कोई ना कोई बुरा साथ में कर देंगे।
हाँ.
तो उससे क्या होता है, वो आदमी जो आपको मदद करना चाहता है, सहानुभूति ना, वो एकदम ब्लॉक हो जाती है।
Correct.
फिर वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, फिर ये भी कहेंगे पर तेरे में भी तो ये गलती है।
हाँ.
तो उससे क्या होगा, वो जो सारा का सारा दीवार
ब्लेम
गेम शुरू हो जाती है। तो मैंने लाइफ में देखा, जैसे हम पिछली बार ऐसी बात कर रहे थे कि मैं जो हूँ जो मेरी स्थिति है वो मेरी अपनी ही की हुई है। हालांकि हम कई बार कहेंगे मोटे रूप में, कई बार वो दिखाई नहीं देती है, वो कहते मेरा इसमें क्या कसूर है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में जब हम ओवरऑल कहते हैं, कहीं ना कहीं मेरा ही वो किया हुआ होता है। उससे मैंने फ़ायदा क्या देखा है कि एक तो मैं क्योंकि दूसरे को ब्लेम नहीं करता, तो मेरा रिलेशनशिप दूसरों के साथ अच्छा रहता है क्योंकि मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया। दूसरा फिर मेरे को ये लगता है कि अगर वो प्रॉब्लम मैंने ही क्रिएट किया है, सो आई एम द क्रिएटर, प्रॉब्लम मेरी क्रिएशन है। हु इज़ बिगर, क्रिएटर और द क्रिएशन? आई एम बिगर देन द क्रिएशन। तो माना मेरी प्रॉब्लम जो है ना, मैं उससे बड़ा हूँ, तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तीसरा है कि क्योंकि कोई कारण नहीं है, कोई और कारण नहीं है, मैं ही कारण हूँ, तो मैं ही कारण हूँ, तो मैं निवारण भी कर सकता हूँ। माना क्योंकि मेरे ही कारण से ये हुई, तो उसको मैं रेक्टिफाई भी कर सकता हूँ, तो मेरे को दूसरा बदले। कई बार हम कहते हैं दूसरा बदले तो मेरे पर उसका फायदा होगा, पर दूसरा कभी नहीं बदलेगा, इसका मतलब मेरे को कोई चांस नहीं है। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मेरे द्वारा ही है, तो मैं अब भी सही उसको ना चेंज करना शुरू कर सकता हूँ।
करेक्ट, इनिशिएटिव हमें खुद ही लेना है।
और चौथा मेरे को ये भी लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, देखो कोई टीचर प्रॉब्लम देता है आपको, सोल्यूशन उसके पास होता है तभी प्रॉब्लम आती है, है ना, सोल्यूशन से ही प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। तो हमको ऐसा, मेरे को पर्सनली फील होता है, वास्तव में कोई प्रॉब्लम आई है, सोल्यूशन उसका पहले से ही तैयार है, सिर्फ थोड़ा सा ना उसमें कन्फ्यूजन डाल दिया है, कहते हैं ना क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो वो ही बस उसको, वो भी क्या इंटेलेक्ट को ना आपको तेज करने के लिए आता है। देखो जब तक हम एग्जाम नहीं देते, हमारी प्रमोशन नहीं आती, तो मैं हर प्रॉब्लम को यही समझता हूँ मेरे प्रमोशन का समय है, मैं ग्रो होऊंगा उस प्रॉब्लम से। तो उसके आधार से आई रियली टेल यू, आई रियली लव माई ट्रबल्स, आई लव माई प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैं जब प्रॉब्लम देखता हूँ, चांस बना है ग्रो होने का, चांस बना है प्रमोशन का, कोई ना कोई नई इंटरनल या एक्सटर्नल ग्रोथ होने का समय आया, मैं उस तरह से देखता हूँ तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगती, मेरे दोस्त की तरह बन जाती है। देखने में लगेगा ये सारी फिलॉसफी है, पर आई अप्लाई इन माई लाइफ, तो मैंने देखा है बहुत ईजी लाइफ हो जाती है उसे, कि किसी को दोष ना दें और यही समझें कि प्रॉब्लम आती कब है, सोल्यूशन हमारे पास है, हम ही कारण है, हम ही निवारण है, हम ही सोल्यूशन करते हैं, और मेरे को किसी की वेट करने की जरूरत नहीं है, आई कैन स्टार्ट राइट अवे।
बहुत अच्छा भाई जी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं ऑफिस की, ऑफिस में कई बार ऐसा होता है कि ऐसा माहौल बन जाता है, शायद कई बार हमारे जो कॉलीग्स होते हैं वो भी हमें पसंद नहीं करते, क्यों वो हम खुद भी नहीं जानते। तो ऐसे में ना आपको पता है कि रीजन क्या है, ना आपके पास कोई सोल्यूशन है, और ना ही आपके पास कोई ऐसा हेल्प है जिससे आप समझ पाए कि क्या प्रॉब्लम है, तो ऐसे में क्या किया जाए?
देखो मेरे को ऐसा लगता है कि एज ह्यूमन बीइंग्स हम सभी अच्छे हैं इनेटली, माना हमारी अंदर में अच्छाई भरी हुई है, लेकिन क्या होता है थोड़ा फियर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, कई बार ये नहीं होता कि वो आपसे नाराज है, लेकिन उनको अपना ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इस कारण से सामने आपको देखते हैं तो आपसे ईर्ष्या निश्चित हो जाएगी। तो मैंने क्या नोट किया है, ईर्ष्या होती ज़्यादातर बराबर वालों में या थोड़ा नीचे ऊपर वालों में। तो मेरी आजकल टेंडेंसी क्या होती है, या तो मैं अपने आप को बहुत ऊँचा ले जाऊँ कि आई एम आउट ऑफ रीच, या मैं अपने आप को बिल्कुल नीचे ले जाऊँ जो कोई मेरे से थ्रेटनिंग फील ना करे। तो मैंने नोट क्या किया है कि जब वो देखते हैं ये तो छोटे से छोटा काम भी कर लेता है, वो छोटे से छोटे लाइफ में मैंने क्या नोट किया है, छोटे काम करने की वैल्यू, जितना करेज मेरे को बड़े काम करने के लिए चाहिए उससे भी ज़्यादा करेज मेरे को छोटे काम करने के लिए चाहिए, क्योंकि छोटे काम करने से मेरे को डर लगता है कि मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, लोग मेरे को छोटी नज़रों से देखेंगे, इसलिए उसका भय लगता है। तो जिस चीज़ से लोगों को भय लगे अगर आप वो करना शुरू कर दो, तो क्या होगा, आपको दुआएँ मिलती हैं, आप लाइफ में देखेंगे बड़े बड़े काम दो चार होते हैं, 95% काम छोटे छोटे होते हैं। और ना आज एक ना जैसे एक रैट रेस है, कि बड़े काम करना है, तो उसमें क्या होता है, जेलसी, एक दूसरे को लेग पुलिंग, कट थ्रोट, ये सब कुछ होता है। पर मैंने देखा है आप छोटे काम करने लग जाओ, लोगों की दुआएं मिलती हैं, दुआ में आपको खुशी मिलती है, तो जो आप छोटे छोटे काम करते ही लोगों का प्यार पाते, लोगों को एनकरेजमेंट लेते, आप बड़े बड़े काम भी करते रहते हो, तो छोटे से आपका ना मना पूरा होराइजन ऊपर से नीचे हो जाता है।
करेक्ट।
तो उस हिसाब से मिडल में ना जाके आप ऊपर भी जाना सीख लो, नीचे भी जाना, बड़े काम भी कर सकते हो, छोटे काम भी कर सकते हो। तो वो मैं लाइफ में आज भी मैं हंसी की बात है कि हमारा रिट्रीट सेंटर है न्यूयॉर्क में, आज भी मैं किचन में झाड़ू लगाता हूँ ताकि किसी को ये ना लगे वो काम छोटा है, हालांकि मैं बहुत पुराना हूँ वहाँ पर मेरे को लगता है अगर मैं कहूँ कि दूसरा कर ले तो लोगों को लगेगा वो काम छोटा है, पर मेरे को लगाते हुए देखते हो। और ऐसे नहीं है मैं दिखावे के लिए करता हूँ, देखो ये अंदर में लाना होता है, अगर आप दिखावे के लिए करेंगे लोगों को मालूम पड़ जाएगा, लेकिन आप सच्चे दिल से करेंगे लोगों की इंस्पिरेशन आपसे मिलती है। तो आई फाइंड कि जब आप लोगों को इंस्पायर करते हो फिर उनको भय निकल जाता है आपसे, फिर आपको वो आपसे जेलसी भी नहीं करेंगे, आपके रास्ते में रोड़ा भी नहीं अटकाएंगे, और क्योंकि उनको आपसे प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, यू कैन मेक देम फील गुड अबाउट देमसेल्फ्स, और उनकी डिग्निटी को बचाना। एक मैंने देखा ऑफिस में ना कि कोई जिसको कम आता है उसको डिग्निफाइड करके बताना। अभी मैं एक मेरे को ख्याल आता है, मैं जितनी भी जगह काम किया है कम से कम एक आदमी को मैंने जितना मेरे को आता है ना मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। आई टेक पर्सन अंडर द विंग, उसको जैसे ना ऊंचा उठा देने का, उनको हिम्मत दिला देना, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, तो मेरे को उससे बड़ी खुशी मिलती है कि किसी को अपने जैसा बना देना, तो उनको इंस्पिरेशन मिलती है। कई बार लोग ऐसे समझते हैं अगर मैंने सीक्रेट सब लोगों को दे दिए तो मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, मेरे को होता है सीक्रेट आप लोगों को देते रहेंगे आपको नई टेरिटरी, जो मैं बात करता हूँ अनफिल्ट जो है अननोन टेरिटरी में जाएंगे तो वहाँ जाके आप नए नए आपको ना नए नए अनुभव होंगे, नए नए आविष्कार करेंगे, नई नई आपको अनुभूतियाँ होंगी, तो दैट इज वेयर द लाइफ इज। तो मेरे को लोगों की आप मदद करते रहो, अपना जितना भी सीक्रेट सब दे दो सब कुछ, क्योंकि कमी नहीं है, सारी दुनिया में पूरा सेलेस्टियल स्फीयर में बहुत काम करने वाले हैं।
करेक्ट।
तो बस आप लोगों की मदद करते रहो तो आप देखेंगे बहुत वही जो मदद, चाहे वह घर में है, मेरे को हमेशा होता है अगर आपको इतना काम करना है ना थोड़ा ज्यादा कर दो, कभी ओवर सेल नहीं करो अपने आप को।
ओके।
क्योंकि हमने देखा ओवर सेल करेंगे बाद में डिसअपॉइंटमेंट होती है लोगों को।
करेक्ट।
अगर मेरी 50,000 की इनकम है मैं 55,000 का करूं तो लोग कहेंगे अरे हमने तो सोचा नहीं था कि आपको ये भी आता है, तो वो मुस्कुराएंगे आपसे, खुश महसूस करेंगे। लेकिन आपने ओवर सेल कर दिया, करेंगे अरे हम तो समझते थे आपको ये आता है, आपको आता ही नहीं है, तो वो डिसअपॉइंटमेंट होगी। हमारा कितना समय ऑफिस में गुजरता है, अगर वहाँ लोग मेरे से खुश नहीं है तो मेरी मिजरेबल लाइफ है। तो आई फील कि ये जो कहते हैं अपनी लाइफ इजी बनाने के लिए, चाहे वो पर्सनल लेवल पर है चाहे प्रोफेशनल लाइफ पर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना जितना आपको करना है।
करेक्ट। भाई जी कई बार ऐसा होता है कि बात बड़ी नहीं होती लेकिन सामने वाले व्यक्ति को इतना बड़ा लगता है कि हम शायद वो हमसे अगेंस्ट भी हो जाते हैं कई बार, कई बार झगड़े होने लगते हैं घर के अंदर में, बात कुछ बड़ी नहीं होती लेकिन उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं हम कि हम अपने रिलेशनशिप को भी स्टेक पर रख देते हैं, ऐसे में क्या किया जाए?
एक चीज़ मैंने लाइफ में देखी है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मैंने देखा आजकल हम एक दूसरे से जैसे कन्वर्सेशन होती है फिर हम एक दूसरे से हल्के हो जाते हैं, हल्के होने से क्या होता है हमारा जो मजाक है ना, कई बार हमारा मजाक जो होता है ना मैं थोड़ा उसमें सरकास्टिक जो होती ना वो भी थोड़ी नेचर आ जाते हैं, शब्द आ जाते हैं। मैंने देखा एक ग्रुप है, उस ग्रुप के बीच में मजाक करते हैं, हम कहते हैं भी हंसी खेल कर रहे हैं, हमारी जितनी लकोकतियां बनी हुई हैं आप देखेंगे नेगेटिव होता है उसका, मुख में राम राम बगल में चोरी, पैनी वाइस पाउंड फुलिश, सारे नेगेटिव हैं, और हम एक दूसरे का मजाक भी करते हैं, हमको वो मजाक लगता है, और ज़्यादातर मजाक करते हैं हम थोड़ा जो कमज़ोर होता है। बड़े का जो जो आपसे बलवान होगा उसका आप कभी मजाक नहीं करेंगे, क्योंकि डर होता है बैकलैश, माना आपको उसका कंसिक्वेंस मिल सकता है। तो छोटा भी जो होगा वो भी ग्रुप में रहने के लिए मुस्करा देगा, लेकिन अंदर से उनको हर्ट होता है। तो मेरे को लाइफ में होता है एक दूसरे का मजाक करना हो तो उनको ऊंचा उठाने वाला मजाक हो, अपना मजाक आप कर लो। अभी मैं क्यों कह रहा हूँ, एक बार मैं किसी का यंग लोगों से बात कर रहा था, वो कहीं बस में आए थे
जी।
तो मैं ऐसी बात कर रहा था, भी ऐसे ऐसे हम ना एक दूसरे का मजाक हल्के रूप में करते हैं, लेकिन उसी से ही क्या होता है वो बढ़ता बढ़ता बात छोटी सी होती है, पर क्योंकि वो बढ़ती जाती है फिर हमको लगता है अरे ये छोटी सी बात में नाराज हो गया, लेकिन बात वो छोटी नहीं थी। कहते ना वो स्ट्रॉ लास्ट स्ट्रॉ ब्रेक द बैक ऑफ द कैमल, वो लास्ट वाले स्ट्रा ने सब कुछ चेंज कर दिया। तो इस कारण से छोटी छोटी बातें ही वो बड़ी बन जाती हैं, अपने आप में वो छोटी होती है लेकिन एक्यूमुलेटिव इफेक्ट जो होता है ना उसके आधार से होता है। तो मैं ऐसे ही बात कर रहा था तो वहाँ पे लड़कियाँ भी थे लड़के भी थे, अचानक मैं देखा एक लड़की की थोड़ी आँखें भर आई, फिर वो बाद में अपना अनुभव सुना रही थी। कहते जब आपने ये कहा ना कि हमको ऐसे हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, किसी का दिल दुख सकता है, हमारे लिए मजाक है दूसरे का दिल दुख सकता है। कहते हैं मैं जब बस में आ रही थी ये लड़के मेरा मजाक कर रहे थे, कहते मैं भी उनके साथ मुस्करा रही थी ताकि मेरे पर दिखाऊं कि मैं, लेकिन अंदर से मेरे को दुख हो रहा था। अभी आपने ये बोला है ना तो मेरा इसलिए मैं आई एम फीलिंग इमोशनल। तो ऐसा मैंने लाइफ में बहुत बार देखा है, हम कई बार जब हमारे लिए मजाक है दूसरे को लगता है आपने मेरे पर कटाक्ष किया, आपने मेरे पर ब्लेम किया, फिर वो भी अपने आप को बचाने के लिए मजाक के रूप में आपको कुछ बोल देगा। तो आपको लगेगा अरे मैंने तो छोटा सा मजाक किया था, ये देखो उसने मेरा बात का बतंगड़ बना दिया। देखो एक बार ऐसा हुआ, मेरे दो भाई थे
जी,
तो दोनों वो कहीं बिजनेस के ट्रिप पर गए थे, वापस आए तो वो नाराज हो रहे थे एक दूसरे से, बात नहीं कर रहे थे। तो मैंने दोनों से अलग अलग जाके पूछा तो मैंने वही नोट किया, देखो तो मैं उससे थोड़ा सा मजाक कर दिया वो मेरे पर ब्लेम करने लग गया, तो उसने ऐसे ऐसे बोलना शुरू किया, फिर मैंने भी ऐसा बोल दिया, फिर उसने ऐसा बोला, कहते हैं फिर उसके बाद हमारी झगड़ा शुरू हो गया। अभी मैंने दूसरे भाई से जाके पूछा कि देखो उसने कहा था वैसे छोटा सा, कहते हैं उसने मेरे को ब्लेम किया, एक के लिए मजाक दूसरे के लिए ब्लेम। तब से मैंने अपनी लाइफ में ये पक्का किया मजाक करना तो अपने आप का कर लूं, और लकोकतियां यूज नहीं करूं अपना पॉइंट बताने के लिए, क्योंकि आप शो करना चाहते हो मैं समझदार हूं, दूसरा समझदार नहीं है। और तो इस ढंग से मैंने देखा हमारे रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों से ही आप ना किसी का दिल जीत सकते हो, छोटी छोटी बातों में ही हम ना ब्रेक कर सकते हैं रिलेशनशिप। कहते हैं ना स्मॉल स्लिप ऑफ टंग, कई बार इट कैन टेक अस 6 months बैक, 6 महीने आप ना किसी से रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, एक छोटा सा स्लिप है ना सारा वो 6 महीने का आपका जो बिल्ड किया ना रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसे मैंने लाइफ में कहा है, हमको लगता है मजाक करो ऐसा उनको ऊंचा उठाने वाला, तो तब आप देखेंगे छोटी बात बड़ी नहीं बनेगी, बनेगी भी तो वो अच्छाई की तरफ जाएगी।
भाई जी कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस का जो माहौल होता है उसमें भी कई बार क्लैशेस होने लगती हैं, ऐसे सिचुएशन में किस तरह से अपने आप को उन सभी से ऊपर रखकर उन क्लैशेस के साथ में डील करें?
मेरे को ना देखो ये क्लैशेस होते हैं ना कई बार हम चाहते नहीं है, हमारा रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी अचानक ऐसा सिचुएशन आ जाती है, कहते हैं जी हो क्या गया। मैं आपको ना एक किस्सा बताता हूँ
जी।
एक बार हम किसी के साथ गए थे, रिलेशनशिप हमारा बहुत अच्छा है, हम बिजनेस डेवलपमेंट में थे, हम दोनों गए थे, वो फिर हमने जब प्रपोजल दिया हमको वो प्रोजेक्ट नहीं मिला। अभी वो दूसरी बहन थी, तो उसने अपने प्रेसिडेंट को जाके बताया कि देखो ये इस कारण से नहीं मिला कि राम में कोई ना कोई कमी थी, उसने ऐसा नहीं किया इस कारण से नहीं मिला। और बाई चांस ऐसे था, मैं प्रेसिडेंट के साथ बैठा था तो बात निकल पड़ी, देखो ये बिजनेस नहीं मिला हमको क्योंकि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया। मैंने कहा नहीं, बिजनेस इस कारण से नहीं मिला, हमारा प्रपोजल हाई था, दूसरा उनको कम वाला मिल गया इस कारण से था। कहते नहीं, पर दूसरा तो ऐसा कह रहा है कि आपने ऐसे ऐसे किया। मैंने उसको बात कर, उसने ना इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ उसने फटाफट बुला लिया उसको, कहते वो तो ऐसे कह रहा है। अभी क्या है, उसको पता नहीं था कि कभी हमारी आमने सामने बात हो सकती है, उनको लगा कि वो बात यहाँ की रह जाएगी। तो मेरे को क्या है, मैं प्रेसिडेंट पर भी थोड़ा नाराज होने लगा। मैंने कहा आप ऐसे कैसे बिना पूछे करे मेरे से आपने ऐसा बोलना शुरू कर दिया। तभी देखो बहन को भी डर लगा कि देखो, अरे मेरे को तो समझ नहीं थी कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, उसने तो सरसरी तौर पर बता दिया था, बात यहाँ की यहाँ पहुँच गई है। तो क्या हुआ, तो हम वहाँ से तो चले गए, पहले हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है, अचानक हम जहाँ पे वो अपना कैफेटेरिया की तरह होता है जहाँ पे चाय कॉफ़ी लेते हैं किचनेट, हम वहाँ मिले तो हमने देखा दीवार सी खड़ी हो गई है, हेलो कैसे हो, मुस्कराए फिर एकदम चले गए। फिर धीरे धीरे कतराने भी लगे, फिर धीरे धीरे बोलना भी कम हो गया, और यहाँ तक कि भी हो गया हम एक दूसरे को थोड़ा सा अवॉइड भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मेरे को एक बार ख्याल आया, इतना अच्छा रिलेशनशिप अभी, क्योंकि मैं मेरी पोजीशन बड़ी है उससे, अभी गलती उसकी है भी, मेरे हिसाब से उसको लगता होगा उसकी गलती है,
करेक्ट
है भी, उसको लगता होगा मेरी गलती है,
correct.
पर मेरे को लगता है उसकी गलती है, पर अभी कैसे मैं उसको ठीक करूं। तो अभी क्या था, मेरे को लगता था मेरे को ही पहल करनी पड़ेगी। तो मेरे को एक आदत पड़ी थी, मैं ना ब्रेड बनानी आती है मेरे को, बहुत अच्छी ब्रेड बना लेता हूँ, रोल बना लेता हूँ, कई बार मैं ऑफिस भी ले जाता था, लोग बड़े खुश होते हैं फ्रेश ब्रेड बना के। तो वो बहन मेरे को हमेशा कहती थी आप बहुत अच्छी ब्रेड बनाते हो, कभी मेरे को भी सिखाओ, माना बहुत प्यार करती थी मेरे को वो। तो मेरे को लगा कि अभी मैं क्या करूँ, बोलूँ कैसे। तो वो उन दिन मैं ब्रेड बना के नहीं लाने वाला, तो मैंने खास कर ब्रेड बनाई। फिर मैंने दो वो रोल्स होते हैं उसके ना ऑफिस में जाके ना चुपके से रखे, लिख दिया कि मैं ये आपके लिए बनाए हैं। तो वो बाई चांस नहीं थी, पर जैसे ही मैं निकला बाहर से सामने दिखाई पड़ा, उसने देखा वो रखे हैं, तो मैंने कहा मैं आपके लिए ये ब्रेड लेकर आया हूँ। वो भी इतनी खुश हो गई, आप यू आर माई ब्रदर, दोनों हम ना फिर से दोस्त बन गए। तो कहने का मतलब ये है, कई बार आपको हल्का करने के लिए किसी को पहल करनी पड़ती है, तो डरो नहीं पहल करने से। तो मैंने वही देखा है, बात पहुंच जाए, ऐसी सिचुएशन आती है, कौन ठीक है कौन गलत है, कई बार फर्क ज़्यादा नहीं होता है। तो इसके बजाय कि मैं ठीक हूँ, वाई शुड आई यील्ड, तो आई लर्न्ड पावर ऑफ यील्डिंग। तभी देखो स्प्रिंग है ना, गाड़ी में होता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है ना। आप इमेजिन करते हो कि आपके कास्ट आयरन का उसके नीचे रख दो आपके सीट के नीचे, क्या बुरा हाल हो जाएगा आपका।
Correct.
लेकिन स्प्रिंग है ना, कंफर्ट देता है ना। आई आल्सो फील यील्डिंग पारी होती है ना, तो जैसे आप रुई की तरह बन जाओ, आप अंदर से स्ट्रांग हैं तो बाहर रुई, चारों तरफ रुई रुई, आपके कोई घुसा भी आपको लगाएगा ना पहुंचेगा ही नहीं। पिल्लो फाइटिंग करते हैं कि नहीं, लोग मजा आता है, क्यों, एक दूसरे को चोट नहीं लगती है।
Exactly.
तो मेरे को लाइफ में यही रहता है, तो आप इतने हल्के बन जाओ, आप इतना यील्ड करना आ जाए आप में, तो उससे क्या होगा, कोई भी सिचुएशन भी आएगी ना, एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे ना, तो रिलेशनशिप अच्छा बनता है। और मैंने कई बार देखा है, डील करना होता है ना, 49-91 की बात होती है, हम कई बार डील भी करते हैं, तो डील करते करते हम ना कंफर्टेबल लेवल पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद ना वो डील ना अच्छी होती, फिर ना एंड में जाकर ना प्राइड बन जाता है हमारा, गिव इट और टेक इट। उस समय मैंने क्या देखा है कि मैं खुद जीतने की बजाय मैं दूसरे को जता देता हूँ। मैंने देखो ये नई स्ट्रेटेजी शुरू की कि एंड में कहूँगा आपकी जो लास्ट ऑफर है ना वो एक्सेप्ट करूँगा, देखने में लगेगा कि मैं हार गया, उसको 51 दिया, मैंने 49 ले लिया, लेकिन मैंने उसका दिल जीत लिया, डील उसको जिताई लेकिन दिल मैंने उसका जीत लिया। हो सकता है दैट इज इक्वल टू 5 or 10%, उसको 51 मिला, मेरे को 55, 50, 60 मिल गया। तो मैंने वो देखा रिलेशनशिप में, बिजनेस रिलेशनशिप में भी लोगों का दिल जीतना सीखे हम, उनको लगेगा ये हमको ना, क्योंकि आई मेड दैट पर्सन फील गुड अबाउट हिमसेल्फ।
दिस इज सो ब्यूटीफुल भाई जी, आपने ये इतनी खूबसूरत बात कही कि अगर हम दूसरों को उतना इम्पोर्टेंस दे, इतना तवज्जो दे, तो वो भी खुश होकर हमें दुआएं देंगे और हम उन्हीं दुआओं से आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज हमने इतनी खूबसूरत बात देखी जिसमें हमने ये जाना कि अगर हम दूसरों को फील गुड कराएं, उनकी बातों को सराहें, उनके जो कर्म है उन पर उन्हें प्रोत्साहन दें, तो हम महसूस करेंगे कि हमारे अंदर में एक अलग सी ऊर्जा क्रिएट होगी जिससे आप और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो पाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।